मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 23 फरवरी 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन 17 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं अजय सिंह कुशवाहा सतना मध्य प्रदेश से, योगेश कुमार गौर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, विजय कुमार अग्रहरी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, अवधेश कुमार यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अच्छेलाल चौहान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, सुरेश कुमार जटिया उदयपुर राजस्थान से, सुमित कुमार पटना बिहार से, अजीत सिंह न्यू दिल्ली से, मुरारी कुमार सत्यार्थी दोभी गया बिहार से, सरस्वती नायक जबलपुर मध्य प्रदेश से, रितंभरा आर्य कोलकाता से, राजेश कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, सचिन मोहन जागड़े अस्ति बीड महाराष्ट्र से, दीपक अजिनाथ भापकर करजत महाराष्ट्र से, अंकित यादव जबलपुर मध्य प्रदेश से, प्रतिभा सिंह नई दिल्ली से और सत्येंद्र कुमार गुप्ता इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। तो अजय, योगेश, विजय, अवधेश, अच्छेलाल, सुरेश, सुमित, अजित, मुरारी, सरस्वती, रितांभरा, राजेश, सचिन, दीपक, अंकित, प्रतिभा और सत्येंद्र, आप सभी 17 नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही हम सब बहुत उत्सुक होकर स्वागत के लिए तैयार हैं अपने उन सभी नौजवान साथियों के लिए जो अब बहुत जल्दी ही भोपाल पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 28 फरवरी से क्लासेज शुरू होने वाली हैं, जो 15 दिन की क्लासेज होती हैं और उस दौरान सभी हम आमने सामने बैठकर इस बात की चर्चा करेंगे कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी किस तरीके से की जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस स्वागत के बाद अब मैं बधाई देना चाहूंगा अब विशेष रूप से अपने उन 3 नौजवान साथियों के जिनके मेल मुझे मिले हैं और जिन्होंने अभी जो सिविल सर्विस की मेंस की परीक्षा हुई थी 2015 में, उसे क्वालिफाई किया है। मेरे पास 3 साथियों के मेल आए हैं जिसमें उन्होंने एकेडमी और इस डेली ऑडियो गाइडेंस को धन्यवाद दिया है, उन्हें श्रेय दिया है। तो इन 3 साथियों के नाम हैं जितेंद्र सिंह जो दिल्ली से हैं, गौरव धीमान जो चंडीगढ़ से हैं और दिलमिल सिंह सोच। जितेंद्र, गौरव और दिलमिल, आप तीनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी कि आप सब इंटरव्यू में बहुत अच्छा करें, इतना अच्छा करें कि न केवल सफलता ही मिले बल्कि सफलता की सूची में आप सबका नाम बहुत ऊपर हो। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं अपनी ओर से, मैडम की ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से बधाई देना चाहूंगा कोमल अग्रवाल को जो चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने यूपी लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन फाइनली क्वालिफाई कर लिया है और उनका सिलेक्शन यूपी के लोकल फंड एडवाइजर के रूप, ऑडिटर के रूप में हुआ है। तो कोमल, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, सच पूछे तो जो आपकी सफलताएं हैं मूलतः आपकी ही सफलताएं हैं। हम मुझ जैसे छोटे मोटे लोगों का जो रोल होता है दोस्तों, वो केवल मदद करने का रोल होता है और मैं इसे इस रूप में परिभाषित करता हूं जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठाया तो कृष्ण ने था और जब भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो श्रेय कृष्ण को ही मिलता है और वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो छोटे छोटे बिचारे नन्हे नन्हे से ग्वाल बाले हैं वो भी अपनी नन्नी नन्नी लकुटिया लेकर के, डंडे लेकर के, और उस पर्वत को सहारा दिए हुए हैं। दोस्तों, मैं अपनी भूमिका, अपने आडियो की भूमिका, अपने एकेडमी की भूमिका सच पूछिए तो वो नन्हे नन्हे ग्वाल बालों की उन लकुटिया की तरह ही मानता हूं जो सहारा देते हैं। अंततः जो सारा बोझ है गोवर्धन पर्वत का वो आप उठाते हैं, और उठाने का फैसला भी जिसने किया था वो आप ही थे। हम लोगों ने तो केवल आपके उस फैसले में थोड़ी सी मदद करने के लिए सहयात्री बनने का फैसला किया है। तो दोस्तों, मैं खासकर जो स्टूडेंट सफल हुए हैं मेंस एग्जामिनेशन में, उनसे मैं एक दो बातें विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अब चूंकि आपको मालूम है कि 8 मार्च से ही आप सबके इंटरव्यू शुरू हो जाने हैं। मित्रों, आप अपने अंदर सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस लाइए कि 14-15 हजार लड़के मेंस में बैठे थे, उसमें से लगभग 2,500-3,000 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि मान करके चले कि 5 लड़के में से एक लड़के का सिलेक्शन हुआ है और उसमें से आप एक हैं। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने का एक बहुत बड़ा कारण बनना चाहिए, नंबर एक, क्योंकि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस का बहुत बहुत और बहुत बड़ा रोल होता है। मित्रों, मैं उसका बहुत प्रत्यक्ष रूप से भुक्तभोगी हूं और उस पर मैंने बहुत एंगल से, अलग अलग कोण से विचार भी किए, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से, और वो सोच ही हो सकती है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो पैदा करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात मित्रों, आप सबको अब जो करंट अफेयर्स हैं उन पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं जाट समुदाय का आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी भारत विजिट करके गए हैं, भारत और नेपाल के जिस तरह के संबंध रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था में आ गई है, क्या क्या प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, कहीं मेक इन इंडिया है, कहीं स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया है, ये सारे प्रोग्राम, कहीं मुद्रा की बात हो रही है, कहीं और योजनाएं आ रही हैं, स्मार्ट सिटी आ रही है, इन सब पर आपकी बहुत बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छी पकड़ बन सके उस रूप में इस ऑडियो गाइडेंस की थोड़ी भूमिका हो सकती है। और यदि आप सुन रहे होंगे इस ऑडियो गाइडेंस को तो आप फैसला कर सकते हैं, वो आपके ही ऊपर है कि यह आपके लिए कितना मददगार हो सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको करंट अफेयर पर बहुत अच्छी पकड़ अपनी रखनी चाहिए, इसमें जरा भी किसी तरह का कोई संदेह ना करें। दोस्तों, अब मैं एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा, और ये सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फरवरी के बैच में आ रहे हैं, कुछ ही दिन उनके आने के बचे हैं, सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एक दो बातें मैं आप लोगों से विशेष रूप से शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मित्रों ये है कि जो भी स्टूडेंट अभी फरवरी के बैच में आ रहे हैं उनके लिए एकेडमी के यहां से जो भी पुस्तकें छपी हैं, लगभग 50-60 किताबों की लिस्ट होती है और मेरी सारी किताबें यहीं से ही छपी हैं, इन किताबों को हम 50% रिबेट पर अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि किताब की जो कीमत है उससे आधी कीमत पर हम स्टूडेंट्स को वो किताबें देते हैं। किताबें कौन कौन सी होती हैं, क्या कीमत होती है, उसका सारा एक प्रोसीजर है जो जैसे ही आप यहां एकेडमी में आएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे तो वो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट भर देंगे तो किताबें आपको मिल जाएंगी। किताबों की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक एक कॉपी ही ले सकते हैं, दो दो कॉपी ही ले सकते हैं, और यदि आपके मित्र चाहते हैं, आपके घर परिवार के सदस्य भी चाहते हैं कोई भी टाइटल, तो आप वो टाइटल ले सकते हैं। इसके बारे में कोई निश्चित सीमा नहीं है, एक सूचना ये है दोस्तों। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो 15 दिन की क्लासेस हैं मित्रों, सिर्फ आप लोगों के लिए हैं, हम लोग भी जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए हैं, पूरी तरह से ये क्लासेस आपके लिए हैं। इसे अपने आप दिमाग में रखिए और इसका आपको अधिकतम इस्तेमाल करना है, जितना अधिक से अधिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना इस्तेमाल करना है। इसके लिए जो सबसे पहली शर्त होगी वो ये होगी कि आप देखें कि अपने आप को आप किस तरीके से डिस्टर्बेंसेस से बचा सकते हैं। डिस्टर्बेंसेस से बचाने का मतलब है कि आपका डाइवर्शन नहीं होना चाहिए, और नो डाउट कि डाइवर्शन में जो सबसे बड़ा रोल होता है मित्रों, वो हेल्थ का होता है, स्वास्थ्य का होता है। मैं इससे पहले भी आप लोगों से अपील कर चुका हूं, जब एक महीने क्लास के बच गए थे, कि प्लीज अपने हेल्थ पर अभी से ध्यान देना शुरू करें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर तरीके से सोएं, अपने जीवन को एक डिसिप्लिन में ढालें, जिनसे भी तबीयत खराब होने की आशंकाएं बनती हैं उनसे हर संभव बचने की कोशिश करें। मित्रों, अभी भी आपको इसी नियम का पालन करना है, और जो भी आपकी जरूरी मेडिसिंस होती हैं डॉक्टर की सलाह लेकर के, प्लीज वो आप सब अपने साथ रखें। भोपाल बड़ी जगह है, राजधानी है, यहाँ की आबादी 20 लाख है, यहाँ डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि यदि तबीयत खराब होती है तो उसका जो असर पड़ेगा वो आपके 15 दिन के उपयोग पर पड़ेगा, और डेफिनेटली अगर तबीयत खराब होगी तो आप उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो छोटी मोटी आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे किसी को सिर दर्द होता है, किसी को पेट दर्द होता है, किसी को इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, तो डॉक्टर से एडवाइस लेकर के वो मेडिसिंस अपने पास रखें, ताकि आप इनिशियल स्टेज पर ही उसे लेकर के उन दवाइयों का उपयोग करके अपने आप के अपने स्वास्थ्य को ज्यादा गिरने से बचा सकें। तो मित्रों, ये फरवरी बैच के स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी सूचना थी, और वो मान करके चलें कि उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है, उनको जो हमें ट्रेंड करना है, उनको जो बताना है, वो उसी दिन से शुरू हो चुका है जिस दिन से आप लोगों ने, आप लोगों को एकोमोडेशन का फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, जिसे हम एडमिशन फॉर्म कहते हैं। आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है मित्रों, और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अब आप जबकि अपनी अटैचियां लगा रहे होंगे, यहां आने के लिए सामान जुटा रहे होंगे, प्लीज कोशिश कीजिए कि सारा काम आप अपने हाथ से करें, खुद करें। अपनी अटैची लगाने की जिम्मेदारी, सामान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ना तो अपने पापा मम्मी को दें, ना अपनी बहनों को सौंपें, वो करेंगी खुशी से करेंगी, उन्हें सुख मिलता है अपने लोगों के लिए करने में। लेकिन ये हम मेरे एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप अपनी चीजें खुद करना सीखें, क्योंकि आप जो सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं वो अपनी चीजें खुद करने की बात तो छोड़िए, आप तो दूसरों की चीजें करने की जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं। तो दूसरों की चीजों के लेने की जिम्मेदारी की शुरुआत तो तभी होगी मित्रों, सही शुरुआत तो तभी होगी जब आप खुद अपने काम करने की जिम्मेदारी लेंगे। तो आप खुद अपनी जिम्मेदारियां लें, खुद अपनी तैयारियां करें, बकायदा सिस्टमेटिक तरीके से करें, सोच कर करें कि आपको क्या ले जाना है, आपकी क्या जरूरतें हो सकती हैं, ताकि यहां का जो समय है वो पूरी तरीके से आपके अपनी पकड़ में हो, अपने नियंत्रण में हो। मित्रों, ज्यादा पुस्तकें आपको लाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि मैं इस बात को भी बहुत एनकरेज नहीं करता हूं कि क्लासेस में आकर के आप नोट्स, जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं उन्हें आप नोट करते जाएं, क्योंकि जो भी लेक्चर्स होंगे उनके प्रेजेंटेशन के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जोर इस बात का पर होता है कि आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर पर हो, जो चीजें बताई जा रही हैं, जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है उसको पूरा फोकस होकर के आप पढ़ें। अगर आप डाइवर्ट हो जाते हैं लिखने में भी तो उससे चीजें भटक जाती हैं, उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए आपको नोटबुक पेन तो आपके पास रखना ही है, बाकी आप जो छोटी मोटी चीजें अपने सफर में पढ़ने के लिए जो भी आप पसंद करते हो आप रख सकते हैं। रात में आपको ज्यादा पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा, सुबह 9 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप लगातार बाहर ही रहेंगे, जिसमें आने जाने का वक्त भी शामिल है, फिर आप डिनर लेंगे। मैं चाहूंगा कि जो रात का वक्त भी जो आपको थोड़ा बहुत मिलता है, मिलेगा ही, उसका इस्तेमाल आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में करें। कैसे करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में मैं यहां आप लोगों को क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरा कहने का मतलब केवल यह है कि आप बहुत ज्यादा किताबें ढो करके लाने के चक्कर में न पड़े। वो जो रात का समय होगा या जो खाली समय होगा उसके इस्तेमाल के लिए आपको दूसरी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें, हल्की फुल्की चीजें आपके पास होनी चाहिए, बस वहीं तक अपने को सीमित रखिएगा। यदि आप किताबें बहुत ले भी आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उनका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। मित्रों, अब मैं अंतिम बात अपने उन दोस्तों से कहना चाहूंगा जो सिविल सर्विस के मेंस में बैठे थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। दोस्तों, जो बड़ी चीज होती है उस बड़ी चीज में असफल होने की जो संभावनाएं होती हैं वो 90% होती हैं और सफल होने की संभावना केवल 1% होती है। अनफॉर्चुनेटली आप उस 1% में नहीं आ पाए, 99% में आप फंस गए। लेकिन अगर आप वो जो 1% में अभी जो लोग आए हैं उनका जायजा लेंगे तो पता लगेगा कि इसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो इसी तरह से कभी ना कभी 99% वाले ग्रुप में शामिल हुए थे। दोस्तों, बड़ी चीजों की सफलता की प्रक्रिया ही असफलताओं से शुरू होती है। निराश होने की कहीं कोई बात नहीं है मित्रों। सच पूछे तो सफलता का निर्धारण होता इस बात से है कि ठोकर लगकर गिरने के बाद कोई इस व्यक्ति कितनी जल्दी उठकर खड़ा होता है। अगर आपको ठोकर लगी है तो ये जल्दी से जल्दी उठकर खड़ा होने का वक्त है। ठोकर लगने के बाद गिरे ही रहने का वक्त नहीं है। सूरज मरा नहीं है, आकाश स्थिर है, धरती उसी तरीके से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। जीवन आपके हाथ में है, दरवाजे खुले हैं और आपकी क्षमताओं पर आपकी अपनी पकड़ है। कहीं कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है, केवल एक परिणाम आया और उस परिणाम में चूंकि कुछ लोगों को असफल होना ही था, आप उसमें शामिल हो गए हैं। यही क्रम है। इस सत्य को पूरी निष्ठा के साथ, मैं जानबूझकर निष्ठा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरे साहस के साथ और पूरे धैर्य के साथ स्वीकार कीजिए, खुले मन से स्वीकार कीजिए और फिर आगे की तैयारी में जुट जाइए। मित्रों, कहीं भी जीवन की पूरी यात्रा में पूर्ण विराम नहीं होता है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अभी नीरजा फिल्म फ्राइडे को ही रिलीज हुई है, एक बार आप नीरजा फिल्म देखकर आए। प्लीज नीरजा फिल्म देखकर आए, उसमें पता लगेगा कि यही नीरजा जो 23 साल की उम्र में पहली नागरिक ऐसी बनी जिनको शौर्य चक्र मिला है, केवल 23 साल की लड़की, आप सबकी उम्र उसी के आसपास है, बहुतों की तो उससे ज्यादा भी होगी, और वो भी लड़की कि शुरू की जिंदगी देखिए कि साल भर पहले वो लड़की कैसी थी, किस तरीके से थी, घरेलू लड़की, और किस तरीके से अपने पति के साथ उसके संबंध थे, और वहां कैसे वो भीगी बिल्ली सी बनी रहती है, और बाद में उसने अपने को कैसे परिवर्तित किया और इतना बड़ा काम कर गई कि वो इतिहास का पन्ना बन गई, सुनहरा पन्ना बन गई। लोग उनकी फिल्में देख रहे हैं और सच पूछे तो नीरजा को रोल को देखकर, उसके पूरे के पूरे कामों को देखकर सिसकियां भर रही हैं, आंखों के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। और ये सारा कमाल नीरजा ने केवल 1 साल में किया है। बुरी तरह से प्रताड़ित होने के बाद आज वो पूरे के पूरे देश और दुनिया के अभिनंदन की पात्र बनी हुई है। मित्रों, वही नीरजा थी। आप यही मान लीजिए कि अभी की जो असफलता है वो नीरजा के वो 1 साल के पीरियड से पहले की स्थिति है जब वो प्रताड़ित हो रही थी और आपके सामने भी पूरी संभावनाएं बनी है पड़ी हैं, जबकि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, निराश होने का कहीं कोई भी कारण नहीं है, इसको समझिए, उठकर खड़े होइए, अपने घुटनों पर लगे हुए धूल को साफ कीजिए और माथे पर जो धूल लगी हुई है उसको इस धरती का तिलक मानकर सिर पर धारण किए रहिए और आगे की यात्रा पूरी मुस्तैदी के साथ शुरू कर दीजिए। आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही, क्योंकि घटना कोई ऐसी हुई नहीं है कि आप इसे 2-4 दिन के लिए टालें। टालने का कोई भी तार्किक कारण नहीं है सिवाय आपकी अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति के, और इस मनोवैज्ञानिक स्थिति पर आपका अपना नियंत्रण होना ही चाहिए। आपके अपने मनोविज्ञान पर आपका अपना ही अधिकार होना चाहिए। और जिस दिन दोस्तों ये हो जाएगा, आप मान करके चलिए कि इस जो ये युद्ध भूमि है इसकी आधी लड़ाई आप जीत चुके होंगे। और मित्रों, ये जो मैं बात कह रहा हूं ये सिर्फ उन्हीं पर लागू नहीं होता है जिन्होंने मेंस क्वालिफाई नहीं किया है, बल्कि उन पर भी लागू होता है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वे भी इस दौर से गुजरेंगे ही, उन्हें भी इसके लिए तैयार ठीक उसी तरीके से रहना चाहिए जैसे कि अगर कोई सैनिक सरहद पर जाता है तो पीठ पर गोलियां खाने के लिए तैयार रहता है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस मैं इतनी ही बातें, थोड़ी सी बातें आपको शेयर करना चाहूंगा। मेरे मन में ये बातें थी क्योंकि जो लड़के, जो स्टूडेंट असफल हुए हैं, मैं उनके दर्द को न केवल समझ ही सकता हूं बल्कि महसूस भी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है। और मेरे पास हमेशा ऐसे ही पिछले 30-35 सालों से स्टूडेंट आ रहे हैं जो लगातार इस दर्द से गुजरते हैं। और कुछ दिनों के बाद मैं देखता हूं कि जिन आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, बाद में उन्हीं आंखों में सूरज की किरणें झिलमिलाती हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा, बस थोड़ा सा वक्त का साथ दीजिए, थोड़ा सा जो यूपीएससी की डिमांड है उसका साथ दीजिए। पूरा समाज आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके परिचित आपके साथ हैं। कोई कहीं भी नहीं छूटा है, आपको कोई भी छोड़कर नहीं जा रहा है, वो आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि अभी आप खुद अपने साथ रहिए। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। आज वक्त थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हम जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज कल के न्यूज में ये थी कि आज आपको, आपने सुना कि संसद का बजट अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। बजट अधिवेशन में हमेशा जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं, और संयुक्त अधिवेशन नाम से ही बहुत साफ है कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ बैठेंगे और राष्ट्रपति उनको संबोधित करेंगे। मित्रों, एक बड़ी खूबसूरत बात इसकी यह है कि आप आज राष्ट्रपति जी के संबोधन अगर सुनेंगे, और जो राष्ट्रपति, तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जी बार बार अपने संबोधन में मेरी सरकार कहते हैं। खासकर दो तरह की बातें इस संबोधन में होती हैं। पहली तो यह कि उनकी सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है, अपने मतलब सरकार की उपलब्धियों की बात होती है, और एक भविष्य की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं कि मेरी सरकार यह करने जा रही है। मित्रों, अगर आप संविधान से बहुत अच्छी तरह से पकड़ आप में नहीं है तो आपको लगेगा कि भाई ये जो सरकार है ये तो प्रधानमंत्री की होती है, नरेंद्र मोदी जी की है, तो राष्ट्रपति कैसे कह सकते हैं ये मेरी सरकार है, तो क्या दो दो लोगों की सरकार है? नहीं मित्रों, हम बोलचाल की भाषा में एक समझदारी के लिए हम जरूर नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उन्हें ही सीधे चुन करके सरकार बनाने के लिए आदेश दिया है। लेकिन जो संवैधानिक स्थिति है उस संवैधानिक स्थिति के अंतर्गत सच पूछे तो राष्ट्रपति की ही सरकार है। इसीलिए तो राष्ट्रपति उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और सरकार बनाइए। तो मूलतः ये संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति की ही सरकार होती है। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा मित्रों कि राष्ट्रपति जी का जो संबोधन है, आप जब तक मेरा ये ऑडियो सुनेंगे तब तक उनका संबोधन हो चुका होगा, तो आप लाइव टेलीकास्ट शायद न सुन सके और उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन आजकल तो सब चीजें रिकॉर्डेड होती हैं, आप इसे बाद में सुन लें। और अगर नहीं भी सुन सकते हैं तो ये आपको नेट पर अवेलेबल हो जाएगा। उनका जो अभिभाषण है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तो वेबसाइट पर अवेलेबल होगा ही। मैं चाहूंगा कि आपके पास ये जो अभिभाषण है राष्ट्रपति जी का, यह मूलतः अपने ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। यह बात एक डॉक्यूमेंट की तरह है जो आपको साल भर तक आपकी मदद करेगा। आप देखेंगे कि सरकार ने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं उनका पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है, उसमें बकायदे डेटा होंगे, बकायदे जो बातें कही जाती हैं। मान करके चलिए कि चूंकि राष्ट्रपति जी ने कहा है और वो भी संसद में कहा है, संसद में नहीं भी कहते तो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका अपना वजन है, तो उनमें जो भी बातें कही गई हैं उनको आप ऑथेंटिक मान सकते हैं, चाहे वो डेटा की बात हो या जो प्रॉमिसेस की गई हैं उसकी बात हो। तो उसमें जो आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सिविल सर्विस के लिहाज से, आप वहां से नोट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, और बीच बीच में आप उस डॉक्यूमेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये अभिभाषण आप सबके पास होने ही चाहिए। हो सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हों जो ये सोच रहे हो कि मुझे तो 2 साल के बाद मेंस देना है, उन्हें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मित्रों ठीक है 2 साल के बाद देना है, लेकिन आप अपने दिमाग को परतदार चट्टान बनाइए। परतदार चट्टान मतलब है कि उस पर लेयर्स बननी शुरू हो जाएं। 2 साल बाद जब आप इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे तो आपकी जो लेयर होंगी वो बहुत स्ट्रांग होंगी, क्योंकि पृष्ठभूमि में ऑलरेडी ये डेटा होंगे, ये प्रोमिसेस होंगे। इसके कारण जो उस समय आप लिखेंगे आप देखेंगे कि वो बहुत ही इनडेप्थ चीजें होंगी, बहुत ही रियलिस्टिक होंगी और बहुत ही एनालिटिकल होंगी। इसी को तो हम अनुभव की बात करते हैं, कहते हैं। क्योंकि उसके पास मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 5 साल से 7 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसके पास 7 साल की तैयारी का अनुभव, सिविल सर्विस की तैयारी का अनुभव है, तो बट नेचुरली कि उसके पास ज्यादा मेच्योरिटी है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अभी तो मुझे बहुत वक्त है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपको रखना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है वो है खासकर भारत एवं नेपाल के संबंध को लेकर के। मैंने पहले भी चर्चा की थी जब वहां के प्रधानमंत्री कोहली जी भारत की यात्रा पर आने वाले थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। अखबारों में आप पढ़ चुके हैं कि किन किन बातों पर में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। आज मैं इस पर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं नॉलेज सेंटर पर। तो इसमें दो बातों को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है। पहला तो ये है, आपको मालूम है कि जब नेपाल में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था कुछ ही समय पहले, 1.5 साल पहले की बात होगी, तो भारत ने उसमें जबरदस्त मदद की थी। तो एक जो साइन हुआ है जो दोनों के बीच में, वो ये हुआ कि जो नेपाल अर्थक्वेक के कारण वहां जो ध्वस्त चीजें हुई हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन में भारत मदद करेगा, पुनर्निर्माण में मदद करेगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो साइन हुई है वो है कि कनेक्टिविटी और ट्रांजिट फैसिलिटी को बढ़ाया जाए, मतलब भारत और नेपाल के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो आवागमन के साधन होंगे, व्यापार के साधन होंगे, और इसी तरह से ट्रांजिट फैसिलिटी को बढ़ाया जाए। और डेफिनेटली इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि ये जो ट्रांजिट और कनेक्टिविटी जो बढ़ेगी, इससे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन सब के बीच जो ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसका संबंध इन सभी क्षेत्रों से है, तो उनको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक नदी है, वहां से निकल करके यहां जा रही है, तो उस पर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो कनेक्टिविटी इस तरह के जब साइन हो जाते हैं ट्रीटी, तो उसमें काफी मदद होती है और फिर विवाद की स्थितियां बहुत कम बनती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। तीसरी जो इंपॉर्टेंट खबर मुझे लग रही है दोस्तों, वो BHU को लेकर के है। वैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस एच हिंदू यू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन न्यूज में आपने सुना कि न्यूज में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ज्यादातर अब लोग काशी, मैंने सुना कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ही बात करते हैं। नाम में खैर इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तो आपका केवल ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपको मालूम है 100 ईयर्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पूरे किए हैं, तो सच में इस अवसर पर मैं इसी माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अभिनंदन, बधाई तो क्या दें, अभिनंदन करना चाहूंगा कि 100 बड़े ग्लोरियस ईयर काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पूरे किए हैं, और वहां जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो पढ़कर निकल चुके हैं उन्हें भी बधाई देना चाहूंगा, जो और जो अभी पढ़ रहे हैं उन्हें भी डेफिनेटली अपनी बधाई देना चाहूंगा कि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जिसमें पढ़ने का सपना हिंदुस्तान का ज्यादातर विद्यार्थी देखते हैं, और सच पूछे तो बाहर के भी स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिले। उसकी अपनी एक रेपुटेशन है, और मेरे कुछ बैचमेट्स भी थे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही थे, और मुझे एक बड़ी अद्भुत बात यह लगती थी कि वो साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते थे, लेकिन लिटरेचर पर उनसे बात कीजिए तो लगता था जैसे कि वो साइंस के नहीं लिटरेचर के स्टूडेंट थे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी देन थी जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की जानी चाहिए। मित्रों, 100 साल पूरे किए हैं, और यहां पर मैं आपको केवल दो बातें सिविल सर्विस के पॉइंट से बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये, आपको मालूम है कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। मालवीय जी बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि महामना मदन मोहन मालवीय जी का व्यक्तित्व और उनके विचार और उनके कार्य और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका जो योगदान है वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी स्पेशली। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। दूसरी जो बात है मित्रों की, एक इंस्टीट्यूशन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसने 100 साल पूरे किए हैं, और आप लोगों को मालूम है कि ये उस समय अलीगढ़ जैसे विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, DAV की जो पूरी एजुकेशन की जो श्रृंखला चली, जो शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शुरू किया, इस तरह के बहुत से इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें भारतीयों ने स्थापित किया। और ये एक तरह से एक भारतीय जो शिक्षा पद्धति है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार है, राष्ट्रीयता है, इन सब की भावनाओं को ध्यान में रखकर के इंस्टीट्यूशंस तैयार किए गए थे, क्योंकि जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूशंस थे वो लगने लगा था कि ये अंग्रेजी भाषा इनका माध्यम है और ये तो अपने लिए एक क्लर्क तैयार करने के लिए इंस्टीट्यूशंस खोल रखा है। तो उनको एक तरीके से उनके प्रतिरोध के रूप में भारतीय बहुत से नेताओं ने इस तरह के एजुकेशन को महत्व दिया, जिसमें गांधी जी खुद बुनियादी तालीम की बहुत बड़े हिमायती थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम जो भारतीय नेताओं ने हमारे विचारकों ने शुरू किया था, इसके बारे में आपकी तैयारी होनी चाहिए क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट आपके सिलेबस में है। मित्रों, एक जो छोटी सी खबर थी वो जाट आंदोलन को लेकर के थी। आप हालांकि ये पहली खबर थी, छोटी सी नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब लगभग उतार पर है और जाट आंदोलन पर काफी मैटर मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं और हम लोगों की बात भी हुई है जिसमें हम लोगों ने चर्चा की है कि किस तरह से जो आरक्षण का मुद्दा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, कई कई समुदाय में फैलता जा रहा है अलग अलग राज्यों में। अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है। तो मित्रों, न्यूज के बारे में इतना ही। न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स में मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की एक क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं जिसके लिए मैं चाहूंगा कि आप विशेष रूप से पढ़ें, खासकर इसमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, अभी की जो एजुकेशन सिस्टम नहीं कहना चाहिए, जो एजुकेशन की स्थिति है उसके सुधार के लिए उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए हैं जो इस आर्टिकल के बिल्कुल लास्ट में पॉइंट वाइज दिए हैं जिनको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम पर ये जो 6 सुधार इन्होंने बताए हैं ये आपको मालूम होने चाहिए और आप इन्हें नोट भी कर लेंगे, आपकी मदद करेंगे। मित्रों, इसके बाद अब मैं आता हूं अपने ईमेल वाले चरण पर। तो सबसे पहले मित्रों, मैं अपने उस साथी का नाम बता रहा हूं जो अभी फरवरी के बैच में आने वाले हैं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, जो भी स्टूडेंट उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं उनसे बात कर सकते हैं। उनका नाम है दीपक कुमार जो नैनीताल उत्तराखंड से आ रहे हैं और दीपक कुमार का मोबाइल नंबर है 9456393693। तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। बहुत से मेल आए हैं मित्रों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और इसमें मैं कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूं, उनमें है जितेंद्र शाह जो अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल से हैं, नयन ओझा, भावना पांडे जो मऊ उत्तर प्रदेश से हैं, धनंजय त्रिपाठी, शत्रुघ्न शाह जो अलीपुर द्वार आप भी पश्चिम बंगाल से हैं, पूर्णेश्वर कुमार साहू जो बालोद छत्तीसगढ़ से हैं, अर्जुन नवीन भाई परमार जूनागढ़ गुजरात से हैं, हेमंत कुमार, राहुल राय जो MIT अमेरिका से हैं। आप राहुल राय को बहुत अच्छे से जानते होंगे जिनके बारे में मैं लगातार चर्चा करता रहता हूं। ये हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। रंजीत कुमार, विवेक कमल जो हिमाचल प्रदेश से हैं, अविनाश वारे ठाणे महाराष्ट्र से हैं, पवन कुमार, अनुराग अमीना पटना से हैं, सपना पांडे सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं, पंकज कुमार रांची से, अजित कुमार हरदोई उत्तर प्रदेश से, अभिषेक यादव उत्कर्ष दीप पटना से, विपुल श्रीवास्तव BHU वाराणसी से, रामबोल यादव उत्तर प्रदेश से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से और परविंदर कुमार लुधियाना से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसमें से जो पूर्णेश्वर कुमार साहू जो बालोद छत्तीसगढ़ के हैं, इनके मेल को मैं बेस्ट मेल में शामिल करता हूं और इसके लिए पूर्णेश्वर कुमार साहू को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके और भी बेहतर भविष्य की कामना करता हूं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।